तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
वासुदेव सर्वमिति भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ सारा जगत क्या है, ये वासुदेव ही है, वासुदेव ही है। वेदांत में हम क्या कहते हैं, विवेक चुड़ा क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। तो ये सर्व जगत आत्मस्वरूप वासुदेव ही है, इस प्रकार न समझ में आने का कारण भगवान बताते हैं। लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है, कहते हैं कामई तई तई हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। प्रकृत्या नियता स्वया, सब आदमी की प्रकृति अलग अलग है, जिसे हम वेदांत में कहते हैं वासना, सबकी वासना अलग अलग है, और उस वासना के हिसाब से कामई, उनकी अलग अलग कामना है, और इन कामना के कारण हृत ज्ञाना, उनका ज्ञान ढका हुआ है, उनका ज्ञान ढका हुआ है, तो वो क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं के पास में जाते हैं। देखो अन्य देवता दूर हैं और भगवान वासुदेव आत्मा के रूप में हमारे भीतर हैं, तो इतने नजदीक भगवान को छोड़कर लोग दूसरे देवताओं के पास में जाते हैं। ये भी नहीं, हर सांस में भगवान ये बताते हैं कि मैं यहां हूं, सोहम सोहम सोहम। जैसे ही हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसमें सो हम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे भीतर हैं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, हर सांस में भगवान कह रहे हैं। और उनका क्या है, तम तम नियमास्थाय, वो उनके नियम, उन देवताओं के जो नियम प्रसिद्ध हैं, उन प्रसिद्ध नियमों के हिसाब से लोग पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं, उनमें कामना है, क्यों कामना है, वासना है, वासना के हिसाब से कामना आती है, और उस कामना की पूर्ण करने के लिए वो अन्य देवताओं के पास में जाते हैं। शंकराचार्य जी लिखते हैं, पुत्र पशु स्वर्ग आदि भोगों की प्राप्ति विषयक नाना कामनाओं द्वारा जिनका विवेक विज्ञान नष्ट हो चुका है। विवेक विज्ञान, अरे आत्मा तो मेरे भीतर है, मगर हमको चाहिए क्या, पुत्र चाहिए, पशु, आगे के जमाने में पशु धन हुआ करता था, तो मेरे को धन चाहिए, तो लोग पशु मांगते थे, या स्वर्ग चाहिए, तो वे लोग अपनी प्रकृति से अर्थात जन्म जन्मांतर में इकट्ठे किए गए हुए संस्कारों के समुदाय रूप स्वभाव से प्रेरित हुए, मतलब वासना से प्रेरित हुए, अन्य देवताओं के अर्थात आत्म स्वरूप मुझ वासुदेव से जो भिन्न देवता हैं, आत्म स्वरूप वासुदेव जो हमारे भीतर हैं, उससे जो भिन्न देवता, उनके पास जाते हैं। अरे मैं तुम्हारे अंदर में हूं, यहां पर स्थित हूं, तुम वहां कहां जा रहे हो, उनको उन्हीं की आराधना के लिए जो जो नियम प्रसिद्ध हैं उसका अवलंबन करके भजते हैं, अर्थात उनकी शरण लेते हैं। अच्छा, फिर भगवान क्या करते हैं उन लोगों के लिए? ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा अर्चितुम इच्छति। ऐसे जो साकामी भक्त हैं, जो तनु इन ऐसे अन्य देवताओं की अर्चित उनकी पूजा करते हैं, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, मैं उनकी श्रद्धा को वहीं पर स्थिर कर देता हूँ। चलो, आपको ये श्रद्धा है, आपको अगर भूत प्रेत में पूजा करने की श्रद्धा है, चलो वही करते रहो। यक्ष राक्षस की करनी है तो वहाँ कर लो। तमोगुण जो है भूत प्रेत की करेगा, रजोगुण वाला यक्ष राक्षस की करेगा, सत्वगुण वाला देवताओं की पूजा करेगा। तो आप तामसिक हैं कि राजसिक हैं कि सात्विक हैं, वो तो आपकी वासना के अनुसार आप आते जा रहे हैं, आपके संस्कार उसके हिसाब से आ रहे हैं। तो ये भगवान कहते हैं, ताम एव विदधामि अहम्, तो मैं उसको श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। आपकी निष्ठा इन देवता में, अच्छा चलो ठीक है, आप यहीं पर रहो। शंकराचार्य जी लिखते हैं, जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा और भक्ति युक्त होकर अर्चन पूजन करना चाहता है, उस भक्त की देवता विषयक उस श्रद्धा को मैं अचल स्थिर कर देता हूँ। अगर हमें लगता है कि भूत प्रेत से हमको सब कुछ मिल रहा है, भगवान चलो भूत प्रेत ही करते रहो तुम, या आपको फिर राजसिक यक्ष राक्षस की करनी है, उसमें करते रहो, कोई हर्जा नहीं है। अभिप्राय यह है कि जो पुरुष पहले स्वभाव से ही प्रवृत्त हुआ है, पहले का स्वभाव अपनी वासना से हम प्रवृत्त होते हैं, सब कुछ हमारी वासना के हिसाब से होता है और हर आदमी की वासना अलग है, जिस श्रद्धा द्वारा जिस देवता के स्वरूप का पूजन करना चाहता है उस पुरुष की उसी श्रद्धा में स्थिर कर देता हूं। कर दिया, फिर ये लोग करते क्या है? सहतया श्रद्धा युक्त तस्या आराधन मिहते, फिर वो ऐसे सकामी भक्त उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान ने भी उनका साथ दिया, चलो तुमको ये अच्छा लगता है तुम यही पूजा करते रहो, तो भगवान कहते हैं उस करते हैं। लभते च ततः कामान मय्येव विहितान ही तान, उनको फिर क्या मिलता है कि उन छोटे छोटे देवताओं अन्य देवताओं की पूजा करने से जो फल मिलना चाहिए वो फल उनको देते हैं। वो छोटे देवता आपका जो है इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, ये फल आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, आपको देना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं वो पूछेंगे। और किसने ठीक किया है? भगवान कहते मैंने ठीक किया है, विधान मैंने बनाया है, इस देवता की पूजा करोगे तो ये मिलेगा, इस देवता की पूजा करोगे ये मिलेगा, ये नियम है कर दो, वो दे देंगे आपको बस। उस छोटे छोटे देवताओं के पास में उनको फल रोकने का कोई अधिकार नहीं है, पूजा हुई है फल देना है बस। भगवान कहते हैं, मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धा से युक्त हुआ वह उसी देवता के स्वरूप की सेवा पूजा करने में तत्पर होता है, क्योंकि उसको वहां फल मिल चुका है ना, हमने पूजा की फल मिल गया, अब वो फिर बार बार वहीं जाएगा कि यार यहां पूजा करने से मेरे को फल मिल रहा है। और उस आराधित देव विग्रह से कर्म फल विभाग के जानने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा निश्चित किए हुए इष्ट भोगों को प्राप्त करता है। तो उसके जो है उसका विभाजन कौन करते हैं? भगवान कहते हैं मैं करता हूं, छोटे देवता कौन सा फल देंगे ये मैं देखता हूं, ये मेरे अंडर में है, कौन सा देवता क्या फल देगा। वे भोग परमेश्वर द्वारा निश्चित किए होते हैं, इसलिए वह उन्हें अवश्य पाता है। ये अभिप्राय अवश्य पाता है, उस छोटे छोटे अन्य देवताओं को कोई अधिकार नहीं है, आपने पूरा पिटीशन दे दिया, पूरा प्रेयर आपने पूरा किया, आपको मिलेगा फल। फिर भगवान कहते हैं, ये कामी लोग ये अविवेकी पुरुष विनाशशील फल चाहते हैं। ये कामी लोग चाहते क्या है? अंतवत्तु फलम तेषाम तब भवति अल्पमेधसाम। अंतवत्तु जो फल है वो कैसा है? अंतवत्त है, विनाशशील है, अंतवत्त है, विनाशशील है। फलम तेषाम तद भवति अल्पमेव साम, ये कौन करते हैं भाई? इनकी बुद्धि अल्प है, इनकी बुद्धि अल्प है। क्यों अल्प है बुद्धि? अल्प इस वास्ते है, भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुमको जो है मुक्ति भी दे सकता हूँ, भक्ति भी दे सकता हूँ, तुम कहोगे तुम्हारे साथ घर में भी जा सकता हूँ, हैं, मगर आप आके कभी मंदिर में तो मांगते नहीं हो मेरे को, मेरे से क्या मांगते हो, पुत्र दे दो, पशु दे दो, स्वर्ग दे दो, यही सब मांगते हैं हम, तो ये पुत्र पशु स्वर्ग क्या है, क्या ये परमानेंट है? पुत्र परमानेंट नहीं है, पशु भी परमानेंट नहीं है, स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं अंतवत, ये ऐसा फल चाहते हैं जो विनाशशील है। देवान देव यजो यान्ति, और जो छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं वो छोटे देवताओं के पास पहुंचते हैं, मद भक्ता यान्ति माम अपि, और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। देखो तो उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान विनाशील होता है। देवयाजी अर्थात जो देवों का पूजन करने वाले हैं वो देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं। अब शंकराचार्य जी लिखते हैं कि देखो भगवान बहुत दुखी हैं, भगवान बहुत दुखी हैं, क्या लिखते हैं, अहे बड़े दुख की बात है कि इस प्रकार समान परिश्रम होने पर भी लोग अनंत फल की प्राप्ति के लिए केवल मुझ परमेश्वर की ही शरण में नहीं आते। इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं तुम जो षोड़शो उपचार पूजा अन्य देवता की करते हो वही षोड़शो उपचार मेरी करो तो क्या मिलेगा, अनंत फल, इनफाइनाइट फल मिल सकता है। और छोटे देवता क्या देंगे, लिमिटेड फल देंगे, अंत होने वाला फल देंगे। देखो भगवान को दुख हो रहा है कि लोग मेरे पास क्यों नहीं आते हैं, क्यों छोटे छोटे देवताओं के पास में जाते हैं। अब भगवान खुद ही बताते हैं क्यों नहीं आते हैं, वे मुझ परमेश्वर की शरण में क्यों नहीं आते हैं, भगवान बतलाते हैं। ये भी तो बताना होगा क्यों लोग अन्य देवताओं के पास जाते हैं, आपके पास क्यों नहीं आते हैं? अगर आप अनंत फल देने वाले हो तो लोगों को तो वहां लाइन लगनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परे परम भावम अजानंत है माम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यक्तम, लोग सोचते हैं कि ये भगवान जो ना पहले अव्यक्त थे अभी व्यक्त हो गए, ये शरीरधारी हो गए हैं, शरीरधारी। मन्यन्ते माम अबुद्ध है, ये कौन से लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, अबुद्ध है जिनकी अल्प बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो कहते हैं कि ये भगवान कौन आ रहे, भगवान तो वही है, ये भी हमारी तरह पैदा हुए हैं। परम भावम अजानंत है, मेरा परम भाव, मैं जो परम ब्रह्म हूँ, निर्गुण निराकार ब्रह्म हूँ, ये नहीं जानते, वो ऐसा नहीं जानते हैं। परम भाव अजानंत है मम अव्यम अनुत्तमम, मैं अव्यम हूँ, मेरा कोई विनाश नहीं है, और अनुत्तमम उससे कोई और अच्छा भी नहीं है, तो ऐसा लोग नहीं जानते हैं। तो उनका यह अज्ञान किस कारण से है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना सिस्टमेटिक वे से भगवान जो बताते जा रहे हैं, एक प्रश्न के बाद एक प्रश्न का उत्तर खोलते जा रहे हैं, हर श्लोक के आगे क्या बोलना चाहते हैं ये बताते हैं। अब बताते हैं कि ये लोगों का जो सकाम भक्त हैं उनका अज्ञान किस कारण से है, भगवान बताते हैं। मैं बताता हूँ, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत है, मैं सब लोगों के लिए प्रकाशित नहीं हूं क्योंकि मैं योग माया से अपना शरीर लिया हूं। आपको याद होगा चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ रहे हैं भगवान कैसे शरीर लेते हैं, कब लेते हैं, तो वहां भगवान ने बताया कि मैं अपनी माया शक्ति से शरीर लेता हूं, इनफाइनाइट हूं मैं, जो उस इनफाइनाइट को कैसे फाइनाइट, असीम से कैसे सीमा में आ जाना, ये माया कर देती है। योग माया समावृता, योग माया क्या होती है, सत्व रजस तमस ये तीन गुणों को मिला के योग माया कहते हैं। मूढ़ो अयम ना भी जानती, जो मूढ़ है वो इसको, उनको ये नहीं पता है कि मैं आपकी तरह देखने वाला मनुष्य शरीरधारी व्यक्ति जो हूँ वो परम ब्रह्म हूँ, वो लोगों को पता नहीं लगता है। बोले तो मेरी तरह ही है, इनके भी दो आंख है, दो कान है, दो हाथ पैर, दो पात पैर है, एक ही है, मेरे से भिन्न नहीं है, उनको नहीं पता है। लोको मम अज, लोको माम अज अव्यम, कि मैं अज अनबॉर्न हूं। देखो भगवान का बर्थ हुआ है, भगवान का जन्म हुआ है, हैं, और वही भगवान कहते हैं कि मैं अज, मैं आई एम नॉट बॉर्न, मेरा जन्म नहीं हुआ है, किस स्टैंड पॉइंट से भगवान बोलते हैं? निर्गुण निराकार के हिसाब से बोलते हैं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, अव्ययम, मेरे में कोई व्यय नहीं है, कोई चेंज नहीं है, आई एम इम्पेरिसिबल। सो तीन गुणों के मिश्रण का नाम योग है, वही माया है, और उस योग माया से आच्छादित हुआ मैं समस्त प्राणी समुदाय के लिए प्रकट नहीं रहता हूं। सबके लिए नहीं प्रकट होता है, कोई कोई आदमी बिरला व्यक्ति मेरे को जान लेता है कि मैं कौन हूं। अभिप्राय है कि किन्हीं किन्हीं वक्तों के लिए मैं प्रकट होता हूं, इसलिए वह मूल जगत प्राणी समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। जैसे हम सब नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं? वो योग माया से आवृत है, हमको नहीं पता लगता है। अब राम जी जब सीता जी को खोजने के निकले, जब उनका हरण हो गया, अब वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं? एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, तो साधारण व्यक्ति देख के क्या बोलेगा, ये राम जी है? उसको संशय हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं, जिस योग माया से छिपे हुए मुझ परमात्मा को संसार नहीं जानता, वह योग माया मेरी होने के कारण मुझ मायापति ईश्वर को ज्ञान का प्रतिबंध नहीं कर सकती। देखो, माया हमारे ज्ञान को ढक सकती है, हमारे ज्ञान को ढक सकती है, मतलब हमारे भीतर में आत्मा है मगर मेरे को नहीं मालूम है, उसने हमारी बुद्धि को ढक दिया है। मगर क्या ये योग माया भगवान की बुद्धि को ढक सकती है? नहीं ढक सकती, यही भगवान कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं मायापति हूं, मेरा अखंड ज्ञान है, उसको माया नहीं ढक सकती, इसलिए मेरे को सब कुछ पता है। जैसे कि अन्य मायावी बाजीगर पुरुषों को माया भी उनके ज्ञान को आच्छादित नहीं करती, जैसे जादूगर होता है, जादूगर जादू दिखाता है तो उसमें क्या होता है, दूसरे लोग मोहित हो जाते हैं, मगर जो जादूगर होता है या जादूगर को जो असिस्ट करने वाला होता है वो मोहित नहीं होता, उसको पता है इसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि रोज देखता है ये जादूगर यही एक ही काम करता है, ये उसको मालूम होता है। अब भगवान कहते हैं, चूंकि मेरा ज्ञान अखंड है, मैं क्या क्या जानता हूं, देखो भगवान अगर न बताएं हमें पता भी नहीं लगेगा, भगवान अपने बारे में बता रहे हैं 26वें श्लोक में।
वेदाहम समतीतानि,
वेदाहम समतीतानि,
वर्तमानानि चार्जुन,
वर्तमानानि चार्जुन,
भविष्यानि च भूतानि,
भविष्यानि च भूतानि,
मां तु वेदन कश्चन,
मां तु वेदन कश्चन,
वेदाहं समतीतानि, वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि, मां तु वेदन कश्चन।
वेदम अहम समतीतानि, वर्तमानि च अर्जुन। वेद अहम, वेद मतलब वेद मैंने मैंने जानना, अहम मैं जानता हूं, क्या जानते हो भगवान? सम्यक रूप से अतीत में क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, किसके बारे में? भूतानि। कहने का तात्पर्य यह है कि हर जीवों के भूतकाल को मैं जानता हूं, भूत में कितने जीव पैदा हुए उनके बारे में मेरे को पूरा ज्ञान है। वर्तमान ही अर्जुन, और जो अभी व्यक्त हैं जीव, जितने भी भूत अभी व्यक्त हैं उनके बारे में भी मैं जानता हूं। इतना ही नहीं, भविष्यानि च भूतानि, भविष्य में कौन से प्राणी आने वाले हैं वो भी मैं जानता हूं, वो भी मैं जानता हूं। माम तो वेद न कर, मगर मेरे को कोई नहीं जानता। देखो मजे की बात है, मैं सब जीवों के बारे में, उनके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानता हूं, या पास्ट में अतीत में कितने जीव आए, कितने भूतानि, कितने बींग्स आए मेरे को मालूम है, अभी कितने हैं ये भी मालूम है, अब भविष्य में कितने आने वाले हैं वो भी मालूम है। देखो सब भगवान को मालूम है। अच्छा भगवान आप कैसे जानते हो? वेद अहम, क्योंकि मैं अखंड चेतन हूं, मेरा ज्ञान अखंड है, मेरा ज्ञान देश काल और वस्तु से सीमित नहीं है। हमारा ज्ञान कैसा है? हमारा ज्ञान इस शरीर के अंदर सीमित है, राग द्वेष के कारण वो भी और सीमित हो जाता है। हमें इस दुनिया का ही पूरा ज्ञान नहीं है, हमें जो अच्छा लगता है उसका हम ज्ञान लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। बाकी हम नहीं लेते हैं। देखो इतनी हम लोग ज्ञान शास्त्र पढ़ते हैं, सब अपने अपने राग द्वेष के हिसाब से आते हैं। किसी को विवेक चूड़ामणि अच्छा लगता है, किसी को गीता अच्छी लगती है, किसी को रामायण अच्छा लगता है, किसी को भागवत अच्छा लगता है। देखो अपने अपने हिसाब से आते हैं, सब राग द्वेष से आते हैं। अब बताओ क्या हमें सब पूरा ज्ञान है? नहीं, हमको सब पूरा ज्ञान नहीं है। किसी को फिजिक्स अच्छा लगता है, उसको केमिस्ट्री नहीं अच्छा लगता है, जिसको केमिस्ट्री अच्छा लगता है उसको अकाउंट्स या लॉ अच्छा नहीं लगता है, सबके अलग अलग। तो हमको यहाँ की इस दुनिया का ही पूरा ज्ञान नहीं है, हर चीजों का हमको ज्ञान नहीं है। मगर भगवान को सबका ज्ञान है। कैसे कहो कि सबका ज्ञान है? आपके अंदर बैठे हुए भगवान, आप जो कर्म कर रहे हो उसका पूरा ज्ञान है। इस तरह भगवान अंतर्यामी रूप से हर व्यक्ति हर प्राणी के भीतर में है। अगर हर प्राणी के भीतर में है तो हर प्राणी क्या कर रहा है उसका ज्ञान उनको है, उनका ज्ञान उनको है। माम तु वेद कश्चन, मगर मुझे कोई नहीं जानता। सब जीवों को मैं जानता हूं मगर मुझे जीव नहीं जानते। तो हिंदी में एक वर्ड है छुपा रुस्तम। भगवान क्या है? छुपे रुस्तम है, उनको सब मालूम है, छुपा रुस्तम है। मगर कोई बिरला व्यक्ति मुझे जान लेता है और मेरे से एक रूप हो जाता है। देखो तो हमारा शरीर भी जो है ना, केवल ये बाहर के जो विषय है ना उनके साथ केवल व्यवहार कर सकता है, इतना ही कर सकता है, नहीं व्यवहार करता और कुछ नहीं कर सकता। आप इसको एक उदाहरण से समझिए कि अगर एक बर्ड, एक पक्षी एक शीशे के सामने अगर आ जाए, शीशे के सामने आ जाए तो क्या करेगी वो पक्षी? वो बर्ड जो है वो जाएगी शीशे के पास, जाएगी दूसरे पक्षी को देख रही है, उसको ज्ञान है कि वो एक दूसरा एक और पक्षी है वहाँ पर, उसको जाके उसको चोंच से चोंच मिलाएगी या उसको बदन से बदन रब करना चाहेगी। मगर कोई ऐसा पक्षी होता है थोड़ा सा इंटेलिजेंट, सारे पक्षी नहीं होंगे, कोई पक्षी होगा जरा जाके देखे तो इस शीशे के पीछे वो पक्षी है कि नहीं। सब पक्षी नहीं जाएंगे, कोई एक पक्षी है वो जाके देखे, अरे पीछे तो कोई पक्षी नहीं है मगर यहां नजर आता है मेरे को नजर आता है शीशे में कोई पक्षी है, मगर उसको ये नहीं समझ आता कि मेरा प्रतिबिंब है। वो सोचता है, पक्षी सोचता है कि यहां पर एक और दूसरा पक्षी है, अगर किसी कारण वो पीछे जाए शीशे के तो देखेगा वहां कोई पक्षी नहीं है, ये तो केवल वो जो पक्षी है इट्स एन अपीयरेंस, रियल में तो पक्षी है नहीं शीशे के अंदर। तो हम भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, हमारा हाल भी उसी पक्षी की तरह है। हम जब जब व्यवहार करते हैं संसार में तो सारा व्यवहार हम सोचते हैं कि हमको यहाँ से सुख मिल रहा है, ऐसा सोच के हम व्यवहार करते रहते हैं, मगर सुख तो है नहीं वहाँ पर, वहाँ सुख है नहीं, वहाँ क्या है? सुख का आभास मात्र है। सुख का स्रोत तो हमारे भीतर है, सुख का स्रोत हमारे भीतर है। तो ये सब भगवान की लीला है, भगवान अपनी जीवनी के बारे में बता रहे हैं। तो कुछ जो है पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि माया क्या है यहाँ पर। तो माया है स्वाश्रय अमोहकम अन्य मोहकम। स्वाश्रय भगवान को मोहित नहीं करती माया, भगवान को छोड़कर अन्य लोगों को मोहित करती है माया, उसको माया कहते हैं। माया भी कौन है? वो व्यक्ति है जिसकी माया है। मायावी की माया मायावी को मोहित नहीं कर सकती। मायावी कौन हुआ? जो माया का मालिक है। तो माया का जो मालिक है उसको माया मोहित नहीं करती मगर अन्य लोगों को करती है। जैसे जादूगर का जादू जादूगर को नहीं मोहित करता, अन्य दर्शक को मोहित करता है, एवं उसको जादूगर का जो सहायक होता है उसको भी मोहित नहीं करता है, उसको भी मोहित नहीं करता है। तो कौन से लोग ऐसे हैं जो इस माया से प्रभावित नहीं होते हैं? तो तीन किस्म के लोग हैं जो प्रभावित नहीं होते हैं। एक है एकांतिक भक्त, वो माया से प्रभावित नहीं होता। दूसरा है तत्वित, जो ज्ञानी है वो भी माया से प्रभावित नहीं होता। और तीसरा है मामेव प्रपद्यन्ते, जिसने भगवान की शरण ले ली वो भी माया से प्रभावित नहीं होता है। अच्छा, भगवान की शरण में चला गया। तो इसको समझाने के लिए जो है ना, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल है? कबीर कहते हैं कि जो दाने होते हैं ना, जब हम लोग ग्राइंड करते हैं, आगे के ज़माने में चक्की होती थी तो दाने डालते थे, तो उसमें एक कील होती है, सेंटर में एक कील होती है, उसके चारों तरफ वो चक्की घूमती है। तो कहते हैं जो दाने कील के पास होते हैं वो नहीं पिसते हैं, जो कील की शरण में चले गए वो दाने पिसते नहीं हैं। इसी तरह से मामेव प्रपद्यन्ते, जो लोग भगवान की शरण में चले गए हैं वो भी माया के फेर में नहीं पड़ते। या ठाकुर रामकृष्ण कहते थे कि जो मछली जो है मछुआरे के पैर के पास होती है वो मछुआरे के जाल में नहीं पकड़ी जाती। जो वो भी है एज इफ जो है वो मछली उसके पैर के पास में आके उसके शरण में आ गई, तो मछुआरे के शरण में जो आ गई, पैर के पास में आ गई, तो वो जो है पकड़ में नहीं आती है। तो माया का खेल कब शुरू होता है? पहली श्वास से माया का खेल शुरू होता है, पहली श्वास से माया का खेल शुरू होता है। हाँ, आर यू अरुण जी, यू कैन कम इन। अच्छा, अब भगवान कहते हैं किस कारण से जीव आपको नहीं जान पाते? अब कारण बताइए, क्यों आपको जीव नहीं पहचान पाते हैं? अब भगवान बताने जा रहे हैं कि हम क्यों नहीं उनको जान पाते हैं। 27वां श्लोक,
इच्छा द्वेष समुत्थेन,
इच्छा द्वेष समुत्थेन,
द्वंद्व मोहेन भारत,
द्वंद्व मोहेन भारत,
सर्वभूतानि सम्मोहम्,
सर्वभूतानि सम्मोहम्,
सर्गे यान्ति परन्तप,
सर्गे यान्ति परन्तप,
इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम्, सर्गे यान्ति परन्तप।
इच्छा द्वेष समुत्थेन, द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा द्वेष, कल्प्रिट कौन है? इच्छा और द्वेष। इच्छा मतलब कामना, द्वेष है ट्रेड, नहीं चाहते हैं आप उसको। इच्छा क्यों आई? इच्छा का अनदर वर्ड जो है राग है। आप अटैच जिसके साथ में हैं उसके कारण आपके अंदर कामना आती है, जिस चीज़ों से आप वो आगे सुख मिला है उससे आप जो है जुड़ जाते हैं, उनसे राग हो जाता है। तो भगवान कहते हैं राग और द्वेष के कारण ये मोहित हैं सब। सर्वभूतानी सम्मोह है, सर्गे यान्ति परन्तप है। और ये सारे भूत कैसे हैं? जो है सम्मोह, उनको अज्ञान हो गया, अब ज्ञान नहीं है। सर्गे यान्ति परन्तप है, सर्गे जन्म से ही, जन्म से ही ऐसा हो जाता है। तो हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। द्वंद्व मोहेन, द्वंद क्या है? द्वंद मतलब पेयर ऑफ अपोजिट, सुख और दुख, शीत और उष्ण, मान अपमान, ये सब क्या है? ये द्वंद हैं, पेयर ऑफ अपोजिट हैं। तो सुख और दुख के कारण हमारा मन कभी भी कुछ और करने के लिए खाली नहीं होता। तो ये सुख दुख क्या है? मोह कम है, मोह कम है। जैसे ही सुख दुख आता रहता है ना, हम उसी में उलझे रहते हैं। देखो, आप अपने जीवन को देखो, आपने जितना भी समय बिताया है आज तक, जितने भी उम्र आपकी हो गई है, सारा का सारा समय आप किस में उलझे रहे? या तो दुख का निवारण करते रहिए, दुख आ गया इसको हटाओ, या सुख की प्राप्ति के लिए आप चेष्टा करते रह गए, तो सारा जीवन तो ये सुख दुख में ही उलझा रह गया ना हमारा। तो ये सुख दुख मोहकम है। इच्छा द्वेष समुत्थेन, तो इच्छा द्वेष सुख, ये इच्छा द्वेष कैसे शुरू होती है? सुख दुख से उत्पन्न होती है। आपको जहां जहां सुख हुआ, आप उसको सुख पाने के लिए बार बार वो करते हो, ऐसा तो राग और द्वेष वहां से शुरू होते हैं, सुख और दुख से। कुछ विषय से राग द्वेष के कारण सुख अथवा दुख होता रहता है। विषयों से राग है आपका, अगर वो विषयों, जिस विषय को आप चाहते हैं अगर आपको मिल जाए तो सुख हुआ, और अगर ना मिले तो दुख हो गया। यार जिस विषय को आप पसंद नहीं करते वो मिल गया तो दुख हो गया, और जिसको आप नहीं चाहते हो नहीं आया तो आप खुशी है, नहीं आया ठीक है, अच्छा है, सुख है। तो ये सुख दुख क्या है? व्यक्तिगत अनुभूति है एवं राग द्वेष के ऊपर में निर्भर है। राग द्वेष के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इस द्वंद रूपी मोह जो इच्छा द्वेष से उत्पन्न होता है, उसने सब मनुष्यों को मोहित कर रखता है। हर व्यक्ति अपने राग एवं द्वेष के कारण अपना मोह जाल बना लेता है। हर व्यक्ति का अपना एक संसार बना हुआ है, हमें ये पसंद है ये नहीं पसंद है। आपके हर परिवार का, हर व्यक्ति की अपने राग द्वेष अलग अलग हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स सबके अलग अलग हैं, और हर व्यक्ति सुख दुख को पाने के लिए बाहर एडजस्टमेंट करता है। देखो बाहर एडजस्टमेंट करता है, एडजस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? भीतर। राग द्वेष कहाँ है? भीतर है। इन राग द्वेष के कारण सुख दुख आता है, ये राग और द्वेष के कारण सुख दुख आता है। सुख दुख कहाँ है? बाहर आते हैं, सिचुएशन बाहर बनती हैं, और हम उस सुख दुख को एडजस्ट करने के लिए बाहर परेशान रहते हैं। हमें एडजस्टमेंट कहाँ करना है? भीतर। राग द्वेष को अगर हमने जीत लिया तो सुख दुख जीत गए। सर्ग, सर्ग का मतलब ये राग द्वेष कैसे हैं? सर्ग मतलब जन्म से हैं। सर्ग मतलब जो है सृष्टि भी होता है, सर्ग का मतलब जन्म से है ये। अच्छा, तो ये मोह जन्म से ही आ जाता है, वासना जन्म के साथ आती है, और ये सब पूर्व जन्म के संसार संस्कार हैं, ये सब तो हमें अच्छी तरह मालूम है। हम वासना की कैपिटल लेके आए हैं, और अगर हमने ठीक ठीक कर्म किए तो ये वासना की कैपिटल जो है कमती होती जाती है, वासना कैपिटल कम हो जाएगी, और उसके बाद में आस्ते आस्ते हमें ज्ञान हो जाएगा जब वासना कैपिटल कम हो जाएगी। तो छोटे बच्चे में भी राग द्वेष देखा जाता है, वासना देखी जाती है। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोदी में आना चाहता है, 10 व्यक्ति होंगे मगर वो छोटा बच्चा बोलेगा उधर जाना है, माँ के पास जाना है, वासना है। छोटे बच्चे को आप जो है टॉफी चॉकलेट आइसक्रीम, वासना है। अच्छा छोटे तो छोड़िए भाई, हम लोग की वासना देखो। हम लोग को चाइनीज फूड मिल जाए, अमेरिकन फूड मिल जाए, वासना। अच्छा ये वासना का मजा है, कई बार ऐसा होता है कि ये वासना ऐसा नहीं है कि जैसे ही जन्म हुआ सारी वासना एक साथ आ गई, ऐसा नहीं होता है। कई बार वासना प्रकट होते होते काफ़ी समय चला जाता है। हम लोगों ने देखा है ना, सारी इंद्रियां पैक अनपैक करना होता है, तो कई बार जब पैक करके तो हम आते हैं यहाँ, अनपैक में कई बार डिले हो जाता है, देरी से खुलता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कई बच्चे चलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा देते हैं, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, ये बच्चा बोलता क्यों नहीं है, इसको इस समय बोलना चाहिए था, इस समय बैठना चाहिए था, इस समय चलना चाहिए था, ये उठ के खड़ा नहीं हुआ अभी तक है, ऐसा हम सोचते हैं। तो अनपैक में कभी कभी डिले होता है। तो जन्म से ही हमारे राग द्वेष हैं और ये चलते रहते हैं। मगर कोई रेयर व्यक्ति सोचने लगता है, कोई रेयर के मन में ऐसा आता है कि कस्तम को हम कुता आयात है, को मे जननी को मे ताता है, ये कौन हूं मैं भाई, ये सारा जीवन खाली मैं खाली लड़ता ही रहा, दौड़ता ही रहा, खाली जाओ कमाओ लेके आओ फिर राशन लाओ बनाओ दो वेला खाना बनाओ खाओ पियो टायर्ड हो गए सो जाओ, ये करते 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 एक दिन आ गया रिटायरमेंट आ गया, फिर आप बैठ के पीछे सोचते हो क्या किया हमने जीवन के अंदर में, क्या मेरा जीवन इसीलिए है, यही काम करना था क्या इतना है? तो इस तरह माया व्यक्तियों की बुद्धि को राग देश के द्वारा सुख दुख से ढक देती है। कैसे माया ने ढका? माया ने वासना के हिसाब से राग द्वेष के हिसाब से हमारी बुद्धि को ढक के रखा है, उस बुद्धि को और कहीं जाने नहीं देता है, उस बुद्धि में केवल राग, मेरे को ये चाहिए इससे द्वेष है, मेरे को ये सुख चाहिए ये दुख नहीं चाहिए, इसी में हम फंसे हुए हैं और इसी में घूमते जाते हैं और यही बंधन है। अच्छा, हम द्वंद्व के कारण जो है बाहर की चीज नहीं जान पाते तो अंदर की बात दूर रही, इस सुख दुख के कारण हम बहुत सी बाहर की चीजों को नहीं जानना चाहते हैं, अंदर की बात बहुत दूर की बात है। तो भगवत प्राप्ति सर्वोत्तम सुख है, सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवत प्राप्ति सर्वोत्तम सुख है, क्योंकि वहां अगर पहुंच गए ब्रह्म को एक बार पा लिया तो फिर तो अब आनंद सागर में हो, आनंद में ही आनंद में हो। और भगवत विस्मरण सबसे बड़ा दुख है, जहां हमने भगवान को भूल गया, भूल गए, भगवान को भूलना मतलब संसार का स्मरण करना, दो ही चीजें हैं, एक तो संसार है एक दूसरा भगवान है, तो आइदर आपके मन में संसार है, अगर संसार है तो भगवान नहीं है, और अब भगवान है तो फिर संसार नहीं है। तो महात्मा लोग जैसे कह देते हैं जहां काम है वहां राम नहीं है, जहां राम है वहां काम नहीं है, देखो कैसे कैसे महात्मा लोग समझा देते हैं। तो राग और द्वेष के कारण ही हमें भगवान का सुख नहीं मिल पाता है, राग द्वेष के कारण हमको ब्रह्मानंद नहीं मिलता है। तो जन्म के बाद जन्म हम ये गलती करते जा रहे हैं, जब पुण्य का फल आता है तो विवेक आता है। देखो कब हमारे मन में विवेक आएगा कि मैं कौन हूं, जब पुण्य आपके अकाउंट में आएगा, भक्ति जब आपकी बढ़ेगी। जब तक पाप है तब तक राग द्वेष चलते रहेंगे, जब तक पाप है राग द्वेष चलते रहेंगे, और जब पुण्य शुरू होता है तब बादल ढके हुए थे, बीच बीच में सूर्य जैसे दिखाई पड़ जाता है, यहाँ पर भी शिकागो में कई कई बार होता है ना, सारा दिन काली ग्रे ग्रे ग्रे, हठात बीच में 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे कभी सूर्य निकल आता है, बड़ा अच्छा लगता है सूर्य दिखाई पड़ रहा है। तो उसी तरह से जब पाप से हम ढका हुआ है हमारी बुद्धि, बीच में पुण्य के कारण थोड़ी सी बुद्धि खुलती है, ओहो फिर थोड़ा सा विवेक आता है। अब बिना पुण्य के होगा भी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, बिना पुण्य के संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलेंगे बिन सत्संग विवेक न हो, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक आपको विवेक ही नहीं होगा। कौन सा विवेक? नित्य अनित्य का विवेक, अनित्य अनित्य के विवेक में हम बहुत एक्सपर्ट हैं, दो अनित्य चीजों के अंदर कौन सी अच्छी है क्या खराब है उसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं, क्योंकि बहुत तजुर्बा है हमें इसका, मगर नित्य और अनित्य का विवेक ये तो जब हम सत्संग में आए तभी पता लगा। इस तरह आप देखिएगे कि राम जी ने सबरी को कहा प्रथम भक्ति कर संतन संगा, पहली भक्ति क्या है? सत्संग करो। शंकराचार्य जी ने क्या कहा भंज गोविंद में? सत्संगत्वे निसंग, पहले सत्संग करो, चाहे भक्ति मार्ग से जाओ चाहे ज्ञान मार्ग से जाओ, सत्संग पहला है। कब मिलेगा? बिना पुण्य के नहीं मिलेगा, बिना पुण्य के नहीं मिलेगा। और जब आपको सत्संग किया ज्ञान हुआ उस ज्ञान से ही शोक जाएगा, नहीं तो शोक नहीं जाएगा कभी। हमारे जीवन का जो दुख है ये सांसारिक दुख जो है वो बिना ज्ञान के नहीं जाएगा। नेक्स्ट।
येषां त्वन्त्यगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः
येषां तु अंतगतम, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अंतगतम पापम, जिनका पाप खत्म हो गया, अंतगतम पापम, जना नाम पुण्यकर्मणा, कैसे खत्म हुआ भाई, उनके पुण्य कर्म बढ़ गए, अब पुण्य आ गया उनके जीवन में। ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, ऐसे व्यक्ति क्या हुए, द्वंद, कौन सा द्वंद, राग द्वेष वाला द्वंद, उनसे क्या हो गए, मोह निर्मुक्ता, उनसे मुक्त हो गए। भजन्ते माम दृढ़वता, ऐसे व्यक्ति फिर हमारा भजन जो है दृढ़ रूप से करते हैं, फॉर्मली, अब वो वेवर नहीं करते हैं, अब जो है भगवान का भजन करेंगे। येषां तु मतलब पिछले श्लोक में जिन व्यक्तियों की बात की है उससे भिन्न, तू वर्ड जो है येषां तु, तू ये बताता है कि पिछले श्लोक में जिन व्यक्तियों की बात की है उससे भिन्न व्यक्ति, अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम, जिनके पाप लगभग खत्म हो गए हैं, जिनके पुण्य फल देना शुरू किए हैं, यानी ऐसा व्यक्ति धार्मिक जीवन है शुरू किया है और सुख भी देखता है, मन शुद्ध हो गया। देखो जब हमारे आंख में कैटरेक्ट होता है तो क्या होता है, कैटरेक्ट होता है तुमको दिखाई नहीं पड़ता, साफ नहीं दिखाई पड़ता है। देखो कैटरेक्ट का ज्ञान जो है सब लोगों को ही मालूम होता है, कैटरेक्ट होने से क्या होता है। संत लोग कहते हैं कि आपकी बुद्धि में कैटरेक्ट लगा है, बुद्धि को ढकना मतलब बुद्धि के ऊपर में एक कैटरेक्ट लग गया है, वो बुद्धि जो है वो आत्म तत्व को बारे में सोच नहीं सकती, जान नहीं सकती। तो ये कैटरेक्ट क्या है, बोले राग द्वेष है। तो ये राग द्वेष कैटरेक्ट को अगर जब हटाएंगे, वो कब हटेगा, जब पुण्य आपका उदय होगा, तब वो राग द्वेष जाएंगे, तब आप जो है देख पाएंगे। तो फिर ऐसा हमको जो है आगे भी हमने देखा है, अब हम एक जो है श्लोक पढ़ेंगे, आपको बताना होगा ये कहाँ से, अगर आप जानते हो तो हाथ उठाना है। तपो बीछीन पापानाम शांतानाम वीतरागिनाम मुमुक्षानाम अपेक्षयोयम आत्मबोधो विधीयते। देखो उत्तर इसी में है, आत्मबोध से है ये। तपो भी छीन पापाना, जिनके पाप छीन हो गए तपस के कारण, इसका मतलब क्या हुआ, मन की शुद्धि पहले करना है। आप जैसे तैसे जहां भी घूम घाम के जाओ आपको मन की शुद्धि हो भगवान बताएंगे ही बताएंगे, मन की शुद्धि पहले करो। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इनका मोह जो कि द्वंद्व रूपी है, सुख दुख है, उससे मुक्त हो गए हैं, अब भगवत स्मरण में आनंद मिलता है। अब उनके जिन में सुख दुख आता है तो बोलते तो बाहरी चीजें हैं, इनको रहने दो, वो आता है आने दो, मेरे को भजन अपना करते रहने दो। अब वो इतना बाहर की चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, परिस्थिति को बदलने की चेष्टा भी नहीं करते, बाहर की परिस्थिति को बदलने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। अब उनमें क्लैरिटी आ गई है, अब परमानेंट सुख पाने की इच्छा बन गई है। जब पाप घटता है एवं पुण्य बढ़ता है तब क्लैरिटी आती है। अब ऐसे व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प ले लिया कि हमको भगवत प्राप्ति चाहिए, एवं एक परमार्थ तत्त्वम न अन्यथा इति एवं निश्चित विज्ञान दृढ़ता उच्यन्ते। अब मेरे को यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, दृढ़ हो गया। अच्छा, अब पूजा भजन कथा सत्संग में मन लगता है, अब इसमें मन लगता है, इससे हमारा मन शुद्ध होगा। अब बाहर के रैट रेस में अब रुचि नहीं रहेगी, बाहर का जो रैट रेस है आपके कंपनी वगैरह में, आपके सहकर्मियों में, जो एक स्पर्धा होती है, इसको लंगी मार के ऊपर जाता है, फिर उसको लंगी मार के ऊपर जाता है, स्पर्धा होती है, है? अब उसके अंदर उसकी रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? अब उसको मालूम है कि इवन इफ आई विन रैट रेस आई स्टिल विल रिमेन ए रैट ओनली, आई विल नॉट बिकम ए कैट। ये पता लग गया अब उसको। तो फिर बाहर हम क्यों जाएं? क्यों हम स्पर्धा में जाएं? अब ऐसे लोगों का जीवन बदल गया। भजन्ते माम दृढ़ताम, ऐसे शुद्ध मन वाले व्यक्ति मुझे भजते हैं। देखो सातवां अध्याय जो है यहाँ खत्म हो जाता है। अब इसके बाद बड़े दो श्लोक जो हैं वो क्या हैं? वो बीज हैं, आठवें अध्याय के बीज हैं। आठवें अध्याय में क्या विषय आने वाला है उसके ये बीज हैं। तो देखते हैं क्या है वो।
जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्।
भगवान बताते हैं ना, भजन्ते माम दृढ़वता, पिछले श्लोक में हमने देखा ना, ये लोग अब हमको भगवान का भजन करते हैं, दृढ़ रूप से करते हैं। तो भाई वो किस लिए भजते हैं, क्या कारण है आपको भजते हैं वो लोग? तो भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ते वो यत्न करते हैं, दे पुट एन एफर्ट। कैसे करते हैं? माम आश्रित, मेरी शरण में आके वो यत्न करते हैं। क्यों यत्न करते हैं भगवान? जरा मरण मोक्षाय, वो जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा और मरण के छूटने के लिए वो प्रयत्न करते हैं। फिर क्या होता है भगवान? ते ब्रह्म तद्विदु, उनको पता लग जाता है ब्रह्म क्या है। और क्या पता लगता है? कृष्णम अध्यात्मम, अध्यात्म क्या चीज है उसको भी पूरा जान जाते हैं। और कर्म च अखिलम, क्या कर्म है ये भी पता लग जाता है उनको। तो भगवान भक्ति का फल बताने जा रहे हैं कि अगर आप भक्ति हमारी करोगे, दृढ़ रूप से भक्ति करोगे, तो क्या मिलेगा आपको। तो भगवान भक्ति का फल बताते हैं। इन विषयों पर भगवान अपने अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। अर्जुन इस विषयों पर प्रश्न भी करेंगे ताकि सब भक्त इसके बारे में जान सके। ये जरा मरण मोक्षाय है, जरा मरण दोनों ही दुखदायी है। जरा जरा मतलब ओल्ड एज, मरण दुखदायी है। देखो युवावस्था दुखदायी नहीं, भगवान ने युवा नहीं कहा। आप युवा के अंदर जब आप युवक रहते हैं तब आप शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मगर जैसे ही आप जरा रोग ग्रस्त हो गए तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई अभी कब प्राण निकल जाए तो अच्छा है, ये शरीर छूट जाए तो बच जाए हम, या मृत्यु से भी डर लगता है। तो जरा मृत्यु मोक्षाय है, तो जो लोग जो हैं मुक्ति चाहते हैं जरा से एवं मरण से, तो मृत्यु से बहुत दुख होता है। लोग ऐसा सोचते हैं मृत्यु से बहुत दुख है, मगर संतों का कहना है मृत्यु क्या है? मृत्यु जो है सोने के बराबर है। जैसे आप सोने जाते हो ना, सोते हो, देखो सोने से आपको डर नहीं लगता कभी, कल सवेरे जागेंगे कि नहीं जागेंगे इसका भय नहीं होता है, कभी नहीं होता है हमको। सोने जा रहे हैं पता नहीं उठेंगे कि सवेरे, नहीं तो सारी रात नहीं सो गए, ये भय ही नहीं है हम लोग को। मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु हो जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे ना, इसलिए भय। तो जन्म क्या है? वो जन्म जागरण है और मृत्यु क्या है, वो सोना है। कुछ महात्मा ऐसा भी कहते हैं कि मरण के उपरांत का क्षण जो है सुख का है, जरा मरण से छूटना माने संसारी दुख से छूटना है। देखो जरा और मरण जो है ना वो इनफाइनाइट नहीं, ये फाइनाइट है, सीमित है, टाइम के अंदर सीमित है। जरा आएगा जाएगा, मरण आएगा एवं जाएगा, मगर आपको अगर जरा मरण से अगर मुक्त होना है तो समाहित चित्त से आपको भगवान का याद करना होगा। माम आश्रित जयंती, मेरी शरण लेकर मेरी भक्ति करते हैं, भक्ति से मन शुद्ध होता है और मेरी अनुकंपा से फिर क्या पाते हैं। देखो मन की शुद्धि के आपको कई बार हमने कई तरीके बताए हैं, कई तरीके बताए हैं, कर्मयोग आपको बताया है, पूजा बताया है, जप बताया है, गंगा स्नान बताया है, तीर्थ भ्रमण बताया है, भगवान की भक्ति करो, जैसे भी करो भगवान की सेवा करो। तो किसी भी तरीके से फिर भगवान कहते हैं कि मैं उनको जो है अनुकंपा, मेरा ग्रेस, क्या ग्रेस है, ते ब्रह्म तत्विदु, उन्हें तत्व ध्यान लक्षार्थ निर्गुण ब्रह्म के बारे में पता लग जाता है भगवान क्या है। वसुदेव इति सर्वम, सारा का सारा जो है वो वसुदेव ही है। साथ ही साथ और भी चीज जान लेते हैं, क्या है, कृष्णम अध्यात्मम, वे प्रत्येक आत्मा को जो हर व्यक्ति में उसको भी जान लेते हैं। अध्यात्मम मतलब क्या, आपकी आत्मा, ब्रह्मन को भी जान लिया, आत्मा को भी जान लिया, क्या फर्क है, मालूम है ना आप लोग को, नहीं मालूम है। ब्रह्म कंडीशन बाय बॉडी इज आत्मन, आत्मन अनकंडीशन बाय बॉडी इज ब्रह्मन, कुछ नहीं है। आपको ब्रह्मन और आत्मन के अंदर भेद नहीं नजर आएगा, एक ही है। और अखिलम कर्म, अखिलम कर्म का मतलब क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति के साधन, अंतरंग बहिरंग जो भी साधन है उनके बारे में आपको सब पता लग जाएगा, कैसे ब्रह्म तक हमको पहुंचना है। तो आपको साधना, यज्ञ, दान, तप, श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि सब चीजों का पता लग जाएगा। तो और भक्ति के और भी फल हैं, तो तीन फल तो यहां बताए, एक तो आप ब्रह्म को जान लोगे, एक अपनी आत्मा प्रत्येक आत्मा को जान लोगे, अखिल कर्म को जान लोगे, इसके अलावा और चार चीजें जान जाएंगे, वो अगले श्लोक में बताएंगे।
साधि भूताधि दैवम माम,
साधि भूताधि दैवम माम,
साधि यज्ञम च ये विदुः,
साधि यज्ञम च ये विदुः,
प्रयाण कालेऽपि च माम,
प्रयाण कालेऽपि च माम,
ते विदुर्युक्त चेतसः,
ते विदुर्युक्त चेतसः,
साधि भूताधि दैवं माम, साधि यज्ञम च ये विदुः, प्रयाण कालेऽपि च माम, ते विदुर्युक्त चेतसः।
साधिभूत, सा अधिभूत, अधिदैवम, सा का मतलब सहित। तो तीन चीजें पिछले श्लोक में 29वें श्लोक में बताई, बाकी चार चीजें यहां बताने भगवान जा रहे हैं कि उनको क्या और पता लग जाता है। अधिभूत के बारे में पता लग जाता है, अधिदैवम के बारे में पता लग जाता है, अधि यज्ञ के बारे में पता लग जाता है, और प्रयाण काल में, मृत्यु काल में, अपिच मामते विदु युक्त चेत, अगर आपका मन भगवान में लगा हुआ है तो इवन आपको मरण काल के एक क्षण पहले भी भगवान का प्राप्ति हो सकती है, एक क्षण पहले भी प्राप्ति हो सकती है। तो आप कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमारी उम्र हो गई है, अब इस जीवन में नहीं होने वाला है। भगवान कहते हैं प्रयाण काले, मृत्यु काल के समय भी आपको प्राप्ति हो सकती है। युक्त चेतसा माम विदु, युक्त मन से मुझे जानते हैं यानी प्राप्त कर लेते हैं। युक्त मन मतलब समाहित चित्त, भगवान में ही चित्त लगा हुआ है। मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, पहले श्लोक में हमने देखा था, इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने ऐसा कहा था, यानी मत चित्त एवं मत पर, मत चित्त का मतलब हुआ कि भगवान में पूरा मन लगा हुआ है, मत पर का मतलब भगवान ही उसके परम गोल हैं, यानी मन और बुद्धि दोनों ही भगवान में समाहित है। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ सहित परमेश्वर को जानते हैं। यह ज्ञान मरण काल में भी हो सकता है जब इंद्रिया और मन पर नियंत्रण नहीं है। देखो, इंद्रिय और मन पर उस टाइम में नियंत्रण नहीं होता है, मगर ज्ञान हो जाएगा। पूर्व संस्कार के कारण वह युक्त चित्त हो जाते हैं। पूर्व संस्कार का मतलब क्या हुआ? अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करते जाते हैं, जब आपका मरण काल होगा, इंद्रियां आपके वश में नहीं है, मन आपके वश में नहीं है, फिर भी वो संस्कार जो बना हुआ है उसके कारण जो है वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। मगर कुछ ऐसे भी भक्ति संस्कारहीन है जिनमें भक्ति नहीं है, वो मरण काल में भी देखो संसार का याद आती है उनको, हैं। तो एक ग्राम में एक ब्राह्मण था और उसके बेटे थे, वो मर रहा था, गरीब ब्राह्मण था, तो चारों बेटे उसके पास में खड़े थे, तो कहता है तुम लोग सब यहाँ खड़े हो, देखो गाय ने झाड़ू खा लिया। झाड़ू समझते हैं ना, गेट के बाहर होगा कहीं पर, मरने के समय उसको झाड़ू याद आ रहा है। देखो, और कोई अगर व्यापारी होगा, दुकानदार होगा, मर रहा होगा और उसके चारों बेटे चारों तरफ होंगे, तो बोलेगा चारों गधे तुम लोग यहां हो तो दुकान पर कौन है? देखो ऐसा, तो ये व्यक्ति कैसे है? ये भक्तिहीन है। तो भक्ति का अभ्यास करे, इससे ज्ञान मरने के समय भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है? हमको अपना काम करते रहना है, अभी टूटे नहीं पड़, भक्ति करते रहो, भगवान की करुणा होगी, एक दिन करो, पता नहीं कब कैसे फटाफट कर देंगे। तो भक्ति का फल क्या है? सब चीज का ज्ञान, अधिभूत आदि का, और भगवान का स्मरण मृत्यु के समय भी होगा। मृत्यु के समय भी भगवान, अगर आप भक्ति आप करते रहो सारा जीवन, तो फिर तो भगवान तो स्मरण होगा ही होगा। तो हमको भक्ति का संस्कार बनाना है, भक्ति के संस्कार से वासना का क्षय होता है। तो इस तरीके से हमारा आज 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अगले कक्षा में हम लोग 8वां अध्याय पढ़ेंगे, पुष्पिका वाक्य।
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम।